ಸಂದೇಹಂ
नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे मोकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिभ्ये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द डिस्कशन ऑन द पर्पोर्ट ऑफ द फर्स्ट वर्स बाय श्रील प्रभुपाद। तो उपदेशामृत के पहले श्लोक के ऊपर जो श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। पिछली बार हम कहां रुके थे? वाचो वेगम की चर्चा समाप्त हुई थी ना? हम ये देख चुके हैं कि बोलने की प्रवृत्ति बहुत तीव्र होती है और इसके कारण आदमी बिना कारण या बिना नियंत्रण के बोलता रहता है। यदि वो कृष्ण के बारे में नहीं बोलेगा तो अवश्य वो प्रजल्प करेगा या बकवास करेगा। मौन व्रत धारण करना, हमने देखा कि ये एक कृत्रिम अवस्था है। इसे थोड़े समय के लिए वाणी का वेग नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु थोड़े समय बाद अवश्य व्यक्ति बोलना शुरू करेगा। इसलिए अपनी वाणी के वेग को नियंत्रित करने का सर्वोत्तम और सही उपाय है कृष्ण कथा करना। सो वी सॉ दैट द अर्ज टू स्पीक इज वेरी स्ट्रांग एंड इफ वन कैनॉट कंट्रोल द अर्ज टू स्पीक एज मोस्ट पीपल कैनॉट that one goes on speaking all kinds of nonsense. So if one does not speak about Krishna, then one will speak nonsense. The process of maintaining silence is an artificial process. It can work only for some time. Sooner or later, the vacho vegam, the urge to speak, will drive us to speak about something. So therefore, the best way of controlling the sense of speech or the urge to speak is to speak about Krishna only, or of things connected to Krishna. So now we will go to the second urge, and that is the urge of the mind. We have done vacho vegam, now manasah vegam. अभी हम दूसरे वेग की चर्चा करेंगे। वाचो वेगम की चर्चा हो गई, अभी मनस वेगम। हाँ जी, तो अभी चार्ट घुमाएंगे। आप पढ़ के आए हैं ना सब? आई होप ऑल ऑफ यू हैव रेड, यू आर ऑल सपोज्ड टू हैव रेड एंड कम। सो वी विल नॉट गो लाइन बाय लाइन बिकॉज इट विल टेक टू लॉन्ग। सो वी थिंक दैट यू हैव रेड, सो वी विल जस्ट डिस्कस द ब्रीफ समरी। क्योंकि आप सब ये पढ़ चुके हैं, ये भी जरा आप घुमा देंगे ना हिंदी। So we will just discuss what Prabhupada is saying here in the purport. Similar pattern, उसी प्रकार से यहाँ जैसे वाचो वेगम के बारे में कहा गया था, या मनसह वेगम, मन के वेगों के बारे में भी कहा गया है। तो जैसे वाणी के लिए दुरुपयोग है, सदुपयोग है और कृत्रिम अवस्था है, उसी प्रकार से मन के वेग के लिए भी दुरुपयोग है, सदुपयोग है और कृत्रिम अवस्था है। तो मन का दुरुपयोग किसमें है? जब हम किसी भौतिक चीज के बारे में सोचते हैं। भौतिक स्मरण करना, माया का या अंधकार का स्मरण करना। प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार के समान है। जहां कृष्ण है वहां कोई अंधकार नहीं हो सकता या अज्ञान नहीं हो सकता। तो ठीक उसी प्रकार से यदि हम कृष्ण का स्मरण करें तो माया के लिए कोई जगह नहीं होगी हमारे मन में। तो सतत कृष्ण का स्मरण करने से या कृष्ण की सेवा का या कृष्ण से संबंधित जितने भी वस्तुएं हैं उनका स्मरण करने से हमारा मन का वेग नियंत्रित हो सकता है और ये मन का सदुपयोग है। सो देयर इज अ पैरेलल बिटवीन द कंट्रोल ऑफ द अर्ज टू स्पीक एंड द अर्ज ऑफ द माइंड फॉर ऑल ऑफ देम एक्चुअली। सो द बेस्ट वे टू एंगेज द माइंड इज टू थिंक अबाउट कृष्णा and the misuse of the mind is to think about Maya. Krishna is like the sun, Maya is like darkness. Wherever there is Krishna, there is no darkness of ignorance. So if one is thinking about Krishna, then automatically there will be no thoughts of Maya, of sense gratification or of any other useless thing of this world. So ye hai man के वेग को वश में करने का सही तरीका कृष्ण का स्मरण। और माया के बारे में स्मरण करने से मन अनियंत्रित रहता है। By thinking about anything other than Krishna, the mind is not controlled. और यदि हम चाहते हैं चाहें कि मन को हम शून्य करें, कोई विचार मन में रखेंगे ही नहीं, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? Suppose we decide we don't want to think of anything, neither Krishna nor Maya. I will make my mind zero, clean of all thoughts. So what is the response? Yes. Yes, so this is not possible to make the mind shunya, to make the mind zero. To not think of anything is not possible. तो किसी चीज के बारे में नहीं सोचना ये तो जीव के लिए संभव ही नहीं है। जीव क्रियाशील है, विचारशील है, तो विचारों के बिना जीव नहीं रह सकता। जीव को या तो कृष्ण का स्मरण करना है या तो माया का, बीच में नहीं हो सकती कोई अवस्था। सो देयर इज नो इंटरमीडिएट स्टेज, आइदर द जीव हैज टू थिंक ऑफ कृष्ण और ऑफ माया, वन ऑफ द टू। So it is not possible, it is highly artificial to try to make the mind zero. और जो लोग ऐसे कहते हैं कि आपके विचारों को शून्य करना है, तो मन में विचार करते रहते हैं कि हाँ अभी मेरे मन से विचार चले गए, अभी मेरे मन में विचार नहीं है। So those who are trying to remove the thoughts from the mind, they are thinking, yes, now my mind is free of thoughts. Now I'm. But that itself is a thought. वो भी एक विचार ही है, इसलिए संभव ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण के स्मरण के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। दिस इज एज फार एज मनस वेग इज कंसर्न्ड, तो ये सकारात्मक पद्धति है। और जो मन को शून्य करने की पद्धति है वो एक कृत्रिम अवस्था है। हाँ जी, आगे इसको घुमाइए। फिर क्रोध, क्रोध का वेग कैसे किया जा सकता है, क्रोध के वेग को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, प्रभुपाद जी ये बतला रहे हैं। क्रोध का नियंत्रण भगवान व भक्त की निंदा करने वाले पर क्रोध करने से हो सकता है। अर्थात ये क्रोध का सदुपयोग है। So the proper use of our anger, or the only way to control our anger, the urge of anger, krodha vegam, is to use that anger on those who blaspheme the Lord or His devotees. So now, what is the wrong use of anger? This is the correct use of anger, by which we can control the mind. What is the wrong use of anger? ये सही उपयोग है क्रोध के वेग का. गलत उपयोग क्या है? अपने इंद्रिय तृप्ति में कोई बाधाएं आती हैं, तो उस समय क्रोध करना. हमारे अहंकार को कोई चोट पहुंचती है, तो क्रोध करना. So when we become angry for because our sense gratification is interrupted, or because our ego is hurt by something, then that is a misuse of anger. It is the wrong use of anger. और इससे क्रोध नियंत्रित नहीं होगा, क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी. This will not control anger. It will only increase this propensity. और यदि कोई कहे, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगा. न किसी निंदा करने वाले व्यक्ति के ऊपर गुस्सा करूंगा और न किसी मेरे भौतिक इंद्र तृप्ति के वाले बंधन करने वाले व्यक्ति में करूंगा. तो फिर ये भी कृत्रिम अवस्था है, संभव नहीं है. हालांकि हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम हमारे इंद्र तृप्ति के लिए या अहंकार के लिए क्रोध नहीं करें. अधिकतर यही होता है. ये ऐसे जो अवसर होते हैं जी कि हम कृष्ण की निंदा करने वाले या भक्तों की निंदा करने वाले पे क्रोध करते हैं, वो बहुत कम होते हैं उदाहरण. परंतु अक्सर जब हम क्रोध करते हैं तो हमारे अहंकार के कारण करते हैं. तो सही क्रोध करने के तीन उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिए हैं. एक तो है जगाई मदराई के ऊपर जब महाप्रभु ने क्रोध किया, तो आप में से कौन बताएंगे कैसे क्यों क्रोध किया था महाप्रभु ने? हाँ, नित्यानंद प्रभु के ऊपर हमला किया मदाई ने, और उसके साथ साथ में जगाई भी थे. तो चैतन्य नित्यानंद प्रभु ने विरोध नहीं किया. ये वैष्णव सिद्धांत, अपने ऊपर प्रहार हो रहा है तो विरोध नहीं किया. परंतु चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना तो उनको बड़ा क्रोध आया कि नित्यानंद प्रभु के ऊपर ऐसे कैसे किया उन्होंने. तो आग जैसे होकर वहां पर आए, अपने सुदर्शन चक्र को बुलाया, और दोनों की हत्या करने ही वाले थे कि नित्यानंद प्रभु ने कृपा याचना की और दोनों की जान बचा दी. So, Nityanand Prabhu was attacked by Jagai and Madhai. He did not protest, but when Mahaprabhu heard, he came running in great anger and he called for a Sudarshan Chakra to kill Jagai and Madhai. But Nityanand Prabhu prayed that the Lord should be merciful. Nityanand Prabhu ne kaha ki is Kaliyug mein sabhi log asuri pravritti ke hain, aur yadi aap लोगों के शरीर को मारते जाएंगे तो सभी की हत्या करनी होगी आप. लेकिन आपका आंदोलन ये नहीं है. आपका आंदोलन है कि हर एक व्यक्ति के अंदर जो असुरी प्रवृत्ति है उसको मारना है. इसलिए जगह मधाई के शरीर को मत मारिए, केवल उनके ऊपर ऐसी कृपा कीजिए कि उनकी असुरी प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी. सो इन दिस कलयुग एवरीबडी इज फॉलन, एवरीबडी इज डेमोनियक. सो इफ यू किल, if you want to kill those who are demoniac, you will have to kill practically everyone on this earth. So better you kill the demoniac propensity in the people, not the body itself, and you bestow your mercy on them. So Mahaprabhu ne Nityanand Prabhu ki baat mani aur kripa ki jagai madhai ke upar, parantu Mahaprabhu ne krodh kiya tha. Dusra udharan hai Hanuman ji ka. What is the example of Hanuman or somebody else? हनुमान ने क्रोध कब किया था?
रावण ने
हाँ, रावण ने सीता देवी का हरण किया था और हनुमान जी वहां पहुंच गए थे। उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया हनुमान जी ने, परंतु क्रोध में उन्होंने सारे लंका को जला डाला। और तीसरा उदाहरण है अर्जुन का, थर्ड एग्जाम्पल इज ऑफ अर्जुन। सो व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ हाउ अर्जुन यूज एंगर? यू वन यस जब युद्ध करता है आदमी, तो आदमी को क्रोध करना पड़ता है ना। क्रोध किए बिना आदमी युद्ध कैसे करेगा? हसमुख चेहरे से हरि बोल कह के तो युद्ध नहीं कर सकता है ना। हरि बोल दुर्योधन, मैं तीर छोड़ रहा हूं तुम्हारे ऊपर, हरे कृष्णा, ऐसे तो नहीं कर सकता है ना। जब युद्ध करना है तो भयंकर क्रोध होना चाहिए, नहीं तो आदमी युद्ध कैसे करेगा। परंतु ये क्रोध अर्जुन ने कैसे किया? कृष्ण के कहने पर किया, तो कृष्ण की सेवा के लिए किया। तो ये एक और उदाहरण है क्रोध का। सो अर्जुन यूज ऑफ एंगर इन द बैटल फील्ड इज बिकॉज इट वॉज मेंट टू प्लीज कृष्णा, इट वॉज ऑन कृष्णा ऑर्डर। और कोई आपको ऐसे उदाहरण याद आते हैं जहां क्रोध का सही उपयोग हो सकता है? कोई भी शास्त्र में हो या प्रभुपाद की लीला में हो या ऐसे कुछ? हाँ हाँ कभी कभी श्री प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को सही शिक्षा या उपदेश देने के लिए कभी कभी क्रोध करते थे। गुरुकुल ऐसे उनका कर्तव्य होता है कि कभी कभी शिष्य का शासन करना, शिष्य को कभी डांटना, कभी समझाना, ये शिष्य का कर्तव्य होता है, गुरु का कर्तव्य होता है। जैसे माता पिता का कर्तव्य होता है कभी कभी बच्चे को डांटना, ठीक करना। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गुरु और द पेरेंट टू समटाइम्स चैस्टाइज और गेट एंग्री विद द वर्ल्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द डिसाइपल और द चाइल्ड। तो ऐसे कई लीलाएं हैं प्रभुपाद जी के। हम जब ट्रेन में जाते हैं तो लोग हमसे झगड़ा करना चाहते हैं कोई ना कोई बहाने से। तो डिपेंड करता है कि सबसे अच्छा यही है कि आप झगड़े में नहीं पड़ो। जब हम बाहर जाते हैं तो क्यों झगड़ा करना चाहिए हमको बाहर के लोगों के साथ? जब वो झगड़ा करेंगे, हम उनके साथ भी झगड़ा करेंगे, तो क्या होगा? वो अपराध कर बैठेंगे हमारे प्रति, क्योंकि हम ऐसे वेश में हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं, तो उनके आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा ये कि हम कहीं बाहर गए और हमारे व्यवहार के कारण यदि वो हमारी निंदा करे तो वो उसके लिए भी अच्छा नहीं है। तो हमें झगड़े में तो नहीं पड़ना चाहिए। परंतु हाँ, यदि कोई बहुत ऐसे कुछ कार्य कर रहा है जिससे कि हमें कुछ कहना ही पड़ेगा, हमारा सामान लेके कोई जा रहा है, हमारे सीट कोई छीन लिया है, कुछ 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 गड़बड़ कर रहा है, तो हाँ कुछ तो जो आवश्यक है वो करना पड़ेगा, लेकिन ढंग से करना चाहिए। हाँ ठीक है, तो ये हो गया क्रोध वेगम। इसके बाद में हाँ प्रश्न ये है कि प्रभुपाद ने इसमें ये नहीं बताया है कि क्रोध को कैसे वश में करना चाहिए, केवल क्रोध को कौन उपयोग करना चाहिए वो बताया है, लेकिन कैसे करना चाहिए वो तो हरे कृष्ण जप करेंगे, है कि नहीं? हम जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप आदि करते हैं तो ये सब खुद ब खुद बिना वजह के क्रोध करने की जो प्रवृत्ति होती है, या एक ऐसी प्रवृत्ति होती है कि छोटे छोटे चीजों को हम सहन नहीं कर सकते, सहनशीलता बहुत कम होती है, थोड़ा भी कुछ हो गया हमको गुस्सा आ जाता है, तो ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। इसलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ही ये प्रवृत्ति चली जाएगी। जप ही सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और श्रवण भी करना चाहिए। श्रवण कीर्तन की पद्धति से ये सब चीजें ठीक हो सकती है, क्योंकि हम कई बार 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 सुनते नहीं है इस बात को, तो हमारे मन में रहता नहीं है वो बात। लेकिन जब हम कोई ऐसे गलत काम करने जा रहे हैं, यदि हमने बार बार सुना होगा तो हमारे मन में आता है कि हाँ हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। अपने आप को रोक लेते हैं थोड़ा विवेक लगा के। तो श्रवण कीर्तन ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है इसको वश में करने के लिए। जब भी हमारे मन में गुस्सा आए तो हमको, बाहर के लोग ऐसे कहते हैं, जब आपको गुस्सा आता है ना तो आप 10 तक गिनो या 100 तक गिनो, वो गिनते गिनते फिर जब तक गिनती कम खत्म हो जाएगी तब तक गुस्सा कम हो जाएगा। जब गुस्सा आता है थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा अपने आप को रोक लेना, लगाम लगाना चाहिए। लगाम नहीं लगाया तो वो ज्वालामुखी की तरह निकल आएगा। तो लगाम लगाना चाहिए कैसे, थोड़ा शांत रह के अपने आध्यात्मिक बुद्धि से, और जप कर लेना चाहिए कि कृष्ण तो बहुत गुस्सा आ रहा है, हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। खास करके जब हमारे अहंकार के कारण हम गुस्सा करते हैं, अधिकतर यही होता है, अधिकतर गुस्सा ऐसे ही होता है। या कभी कभी हम सोचते हैं कि हम भक्तों के लिए कर रहे हैं, भक्तों के कुछ की, लेकिन हम कई बार परिस्थिति को नहीं जानते। बिना परिस्थिति को जाने हुए अपरिपक्वता के कारण हम बस गुस्सा कर ही लेते हैं, वो भी ठीक नहीं है। बिना परिस्थिति को जाने पहचाने हमें एकदम से क्रोध नहीं करना चाहिए, सोचकर मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, भक्तों के लिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बात तो ये है कि ये कृष्ण के लिए होना चाहिए, अहंकार के लिए नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि हमें सोच समझ के देखना चाहिए कि वास्तव में कृष्ण के लिए ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कृष्ण की सेवा होगी क्या यदि हम गुस्सा करेंगे ऐसी परिस्थिति में तो? और ये तो है कि अधिकतर क्रोध का प्रदर्शन होना भी है तो सबके सामने नहीं होना चाहिए। ऐसे कोई कारण हो भी जिससे कि क्रोध का प्रदर्शन होना हो तो सबके सामने नहीं करना चाहिए। तो खास करके जो अन्य भक्त हैं या नए जो लोग हैं वो आते हैं, उनको क्या लगता है कि अरे ये साधु लोग हैं, भक्त लोग हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। भले उनको परिस्थिति पता नहीं होती कि क्या है, पीछे क्या हुआ, किसने क्या गलती की। इसलिए हमारा व्यवहार आदर्श होना चाहिए, प्राइवेट में भी और पब्लिक में भी। ठीक है, लेबर के साथ जब काम करते हैं तो क्या करना चाहिए? यथोचित, जैसा उचित, यथा उचित वैसे करना चाहिए। परंतु फिर भी हमें याद रखना चाहिए, हमारा हम साधु हैं, ब्रह्मचारी हैं, भक्त हैं, याद रख के अपनी सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कभी कभी डांटना भी पड़े, कुछ कड़े होकर कुछ बोलना भी पड़े, लेकिन अपने सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए। और गुस्से में आकर कोई गलत शब्द भी नहीं बोलने चाहिए, जो सड़क की भाषा कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, भले कितना भी गुस्सा क्यों ना आए। तो उतना तो कम से कम विवेक हमारा होना चाहिए। कई बार हमने सुना है ब्रह्मचारी लोग भी कभी एक अपशब्द बोल लेते हैं, तो नहीं बोलना चाहिए। गुस्सा होने के बाद भी हमें नहीं बोलना चाहिए। ठीक है ना, तो पुरानी आदतें हैं, पुराने भक्ति के जीवन में आने के पहले से जो सब संस्कार हैं वो संस्कार कभी कभी चले आते हैं, अभी तक पूरे नष्ट हुए नहीं है। इसलिए भक्त कभी कभी बुरी पुरानी आदतें कभी उभर आती हैं बाहर, हमें सावधान रहना चाहिए। कभी कभी देखते हैं भक्त लोग एक दूसरे, ब्रह्मचारी लोग एक दूसरे को पुकारते, अरे यार ये नहीं करना चाहिए। कई बार हमने सुना है यार यार कैसे कहते हैं, यार नहीं बोलना चाहिए, प्रभु बोलना चाहिए। ये सब पुरानी बुरी आदतें हैं जो यहाँ अभी भक्ति में भी आ जाती हैं। तो हमें आपस को भी सही ढंग से बुलाना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो वो अपने खिलाफ हुआ ना। वैष्णव वो होता है जो अपने खिलाफ कुछ होता है तो वो क्रोध नहीं करता, अन्यों के खिलाफ होता है तो यदि वो सही है तो फिर वो क्रोध करता है। उनका सही क्रोध करना सही होगा तो फिर वो क्रोध करता है, लेकिन अपने खिलाफ नहीं। तो हमें इसलिए हम कहते हैं कि परिपक्व होना चाहिए कि भगवान के जो निंदा करते हैं उनके प्रति क्रोध करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें परिपक्व होकर सोच समझ के करना चाहिए। प्रभुपाद जी कह सकते थे, जब कोई बड़ा वैज्ञानिक आया उसको मुंह पे रास्कल कह देते थे कि तुम रास्कल हो, मूर्ख हो, तुम बड़ा बड़ा वैज्ञानिक है, और वो मान भी लेते थे। लेकिन हम लोग कुछ कहने जाए तो नहीं होगा। एक बार एक माता जी, बहुत पहले के प्रभुपाद के समय की बात है, वो एयरपोर्ट पे पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो किसी को देने जा रही, तो वो आदमी ने कुछ उल्टा पुल्टा कह दिया, ये सब क्या है, कुछ ऐसे कहा होगा कुछ, तो वो माता जी ने उनको कहने लगा रास्कल होते, तो उस आदमी ने सीधा थप्पड़ लगा दिया। प्रसिद्ध उदाहरण है। कभी कभी ट्रेन में भी ऐसे हो जाता है, हमारे भक्तों को गुस्सा कर लेते हैं। कहाँ गुस्सा करना है, हमारे भक्तों को इतनी परिपक्वता नहीं होती है। गुस्सा कैसे करना, कब करना, इसके लिए भी परिपक्वता चाहिए। और हमारे थोड़े ब्रह्मचारी किसी दूसरे मंदिर में थे, बिना टिकट के ट्रेन में गए। ये भी प्रचलित एक भाव कि हम साधु हैं, सब भूमि गोपाल की है ना, तो सारे जो ट्रेन हैं सब वो कृष्ण के ट्रेन हैं, तो हम जा सकते हैं। हाँ, कभी कभी यदि प्रेम से वो मानते हैं ठीक है, लेकिन ऐसे करने से कोई लोग ऐसे जो नहीं मानेंगे। एक बार आप ट्रेन में चढ़ गए बिना टिकट के, गैर कानूनी काम है, तो जो कानून है उसको तोड़ना नहीं चाहिए हमें। तो गए, वो टीसी आए, टीसी से उल्टा पुल्टा कुछ कह दिया और बड़े गुस्से से, क्योंकि टीसी ने भी कुछ कह दिया होगा, अरे क्या साधु, और हमने बहुत साधु देखे हैं, कुछ ऐसे कह दिया। उनको बहुत गुस्सा आया, क्या, उन्होंने उल्टा जवाब दिया, पुलिस को लाकर उनको जेल में डाल दिया। फिर वहां के अध्यक्ष के विचार उनको बहुत कष्ट हुआ, उनको छुड़ाना पड़ा जेल में जाके। वो लोग बोल, कैसे साधु हैं आप लोग, तो कब गुस्सा करना कब नहीं करना ये भी। और हमारे थोड़े भक्त थे, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते कहाँ गए थे, वो गोवा गए थे, कोई विदेशी भक्त थे कोई, वो कहीं कीर्तन कर रहे थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, पुलिस आके बोली यहाँ पर नहीं लगाओ। पुलिस से झगड़ा करने लगे, तुम आसुरी हो, क्या हो, ये हो, वो हो, जो भी और पुलिस के साथ कुछ हाथापाई हो गई। तो पुलिस ने दूसरे पुलिस स्टेशन के लोगों को आया, सबको अंदर कर दिया जेल के अंदर। कितनी बदनामी हो गई सारे भक्तों। तो ठीक है, गुस्सा करना चाहिए, लेकिन वो परिपक्वता होनी चाहिए गुस्सा करने के लिए। हमें तो जानना चाहिए कि कब हमें नम्र होना चाहिए, कब हमें गुस्सा करना चाहिए। यदि परिपक्वता नहीं है तो चुप रहना ही अच्छा है, नहीं तो लोगों को बुरा ये प्रभाव पड़ जाता है लोगों के ऊपर। कभी कभी गुस्सा करना आवश्यक होता है, ये सही, लेकिन उतनी परिपक्वता होनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए भक्त में, तब वो कर सकता है। ठीक है। तो इस सिद्धांत का आश्रय लेके जहां भी जाए प्रचार के, एक कोई भी आदमी दो अपशब्द बोले हम उल्टा जवाब दें, वैसे नहीं करना है। प्रभुपाद जी ने ये भी सिखाया है कि जब कोई उल्टा बोल रहे हो कितने मीठे ढंग से वो भी समझाते, कभी कभी आग के समान जवाब दे देते थे प्रभुपाद जी भरी सभा में, और कभी कभी बिल्कुल नरम होकर बड़े प्रेम से मीठे तरह से जवाब देते थे। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नकल नहीं कर सकते प्रभुपाद जी। यहाँ भी मंदिर में जब लोग आते हैं करते हैं बहुत सारी चीजें करते हैं, हमें बहुत सहनशील होना पड़ता है। कई लोग आते हैं बाहर से, तरह तरह की बातें कहते हैं, व्यवहार उनका अलग अलग से होता है, तो भक्त को बहुत सावधान होना चाहिए, ठीक है। और भक्तों के बीच में भी मतभेद होती है, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हैं भक्त कभी कभी, तो कम से कम सबके सामने नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्राइवेट में जाके जो भी चाहिए वो करें, लेकिन प्राइवेट में भी नहीं करें, लेकिन कम से कम पब्लिक में तो होना ही नहीं चाहिए। से बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं आपको एक मेरी व्यक्तिगत में अनुभव बताता हूँ कि जब मैं ब्रह्मचारी बनने वाला था तो मैं एक मंदिर में गया था दूसरी जगह, और वहां पर थोड़े बच्चे भी थे, तो किसी एक बच्चे ने एक ब्रह्मचारी का जूता उठा के कहीं कुछ कर दिया है, पहन लिया, कुछ तो हो गया, तो वो ब्रह्मचारी वापस आए, वो किधर साउथ अमेरिका के थे वो ब्रह्मचारी, उन्होंने आके दो तीन बच्चे थे बहुत पिटाई की उनकी, बच्चों की गाली गलौज करके पिटाई की। उस समय बिल्कुल नया भक्त था मैं, तो हमारा मन इतना विचलित हो गया कि हम फिर एक दो साल के लिए ब्रह्मचारी बने नहीं। हमें काफी समय लगा उससे निकलने के लिए कि ये क्या ऐसे भी ब्रह्मचारी करते हैं, कैसे कैसे होगा है? तो देखिए कैसा असर पड़ जाता है हमारे व्यवहार से अन्यों के ऊपर। जैसे और दो साल पहले या एक साल पहले हम ब्रह्मचारी बन गए होते, लेकिन फिर अपने आप को समझा हाँ ये सब होता है, ऐसे लोग होते हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि जब हम गलत व्यवहार करेंगे तो अन्यों के आध्यात्मिक जीवन के ऊपर कितना परिणाम पड़ सकता है। ये सबसे बड़ी हिंसा है। एक तो है शारीरिक हिंसा, दूसरा है मानसिक हिंसा, तीसरा है वाचिक हिंसा, सबसे जबरदस्त हिंसा है आध्यात्मिक हिंसा, हमारे भक्ति के ऊपर हिंसा। यदि कोई हमारे श्रद्धा के ऊपर कोई ठोस पहुंचाए या ऐसे कोई कार्य करे जिससे हमारी श्रद्धा कम हो जाए, हमारी दृढ़ता कम हो जाए, तो वो सबसे बड़ी हिंसा है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। हमारे संस्था में विशेष करके हाँ भागवत क्लास सुबह, गीता क्लास शाम को, ये सब होता है, और भी क्लास होते हैं, लेकिन हम ये अनुभव है कि वास्तव में सदाचार की कमी है। सदाचार है ना, कि आचरण कैसे सही होना चाहिए, ये इसकी एक कमी है, अभाव है। इसके लिए कभी कभी भक्त लोग ऐसे व्यवहार करते हैं तो ये ठीक नहीं है। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम ब्रह्मचारी हैं, हम भक्त हैं, और यदि प्रभुपाद जी हमारे सामने होते तो वो क्या कहते ऐसे अवस्था में, यदि हमने ऐसे व्यवहार किया, प्रभुपाद जी सामने खड़े हैं तो क्या हम करते वैसे। तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जो क्रोध नाम की चीज है ये आग के समान है, आग का सही भी उपयोग हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत लापरवाही करने से वो भलाई करने के बजाय वो आग सब विनाश भी कर सकता है। क्रोध ऐसे है, यदि क्रोध को हम वश में करना नहीं जानते हैं, क्रोध को यंत्र के रूप में इस्तेमाल करके यदि किया जाए कि क्रोध हमारा दास हो जाए, न कि हम क्रोध के दास हो जाए। जैसे गुरु जब शिष्य को डांटते हैं तो वो ऐसा नहीं कि वो उनके कंट्रोल के बाहर चले जाता है, वो उनको भी पता नहीं चलता कि मैं क्या बोल रहा हूं, करने क्रोध उनके वश में रहता है, और जानबूझकर वो क्रोधित होते हैं शिष्य के भलाई के लिए। तो इस तरह का क्रोध, तो क्रोध को हमें वश में करके बोलना चाहिए, नहीं तो क्रोध हमें खा जाएगा, हमारे विवेक को नष्ट कर देगा। आपने सब राजा सिकंदर का नाम सुना है ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट, नाम सुना है, तो बहुत साल पहले वो भारत तक पहुंचे थे, सिंधु नदी तक पहुंचे थे। उसके बाद ही यहाँ नाम हो गया हिंदू और हिंदुस्तान वगैरह, सब फिर अरब लोग आए बाद में। तो वो सिंधु नदी तक पहुंचे कहाँ से? ग्रीस देश से, यूरोप से। यूरोप से वो सब राज्यों को जीतते 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 यहाँ तक पहुंचे। तो उन्होंने भारत के योगियों के बारे में बहुत सुना था वहां ग्रीस में, कि यहाँ के आध्यात्मिक लोग रहते हैं। तो एक बार जंगल में जाते समय उन्होंने योगी को देखा जो ध्यान में बैठे हुए थे। तो उन्होंने तुरंत योगी से कहा, अच्छा आप योगी हैं, बहुत अच्छा, हमारे देश में लोग आप जैसे साधुओं को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आप आइए मेरे साथ मेरे देश में। तो योगी ने कहा, नहीं मैं मेरे ध्यान को भंग नहीं करना चाहता हूँ, मेरी साधना यही चल रही है, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। तो बहुत अनुरोध करने से भी योगी ने बात नहीं मानी। तो अलेक्जेंडर को गुस्सा आया, वो तो प्राय विश्व सम्राट जैसे थे, ऐसा कोई नहीं था जो इनकी इनकी बात को नहीं मानता था। और ये जंगल में बैठा हुआ एक फकीर है और ये मेरी बात को नहीं मान रहा, तो उनको बहुत गुस्सा आ गया। गुस्सा आके उन्होंने कहा, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? तो फिर वो फकीर ने कहा, हाँ तुम मेरे दास के दास हो। और गुस्सा है, ये क्या बोल रहा है, मेरे दास के दास हो? तो फिर उसने समझा कि देखो, मैंने क्रोध को वश में कर लिया है, तो क्रोध मेरा दास है, लेकिन तुम क्रोध के दास हो, समझ गए? इसलिए तुम मेरे दास के दास हो। मैंने जिस चीज को वश में कर लिया है, जो मेरा दास है, तुम उसके दास हो, वो तुम्हें नियंत्रित कर रहा है। इस तरह से बात करने के लिए और व्यवहार करने के लिए तो तुम क्रोध के दास बन गए हो, दास क्रोध तुम्हारा स्वामी हो गया है। जैसे क्रोध का वेग आता है, तुम वैसे चल पड़े। तो इसका मतलब है कि हमें क्रोध को अपना सेवक बना लेना चाहिए। जब ऐसे क्रोध करते भी हैं भगवान की सेवा के लिए या भक्तों की सेवा के लिए, तो क्रोध हमारे वश में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्रोध के मारे हम नियंत्रण के बाहर चले जाएं, हमें भी पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। साधारण दृष्टि से जब ये क्योंकि क्रोध क्या चीज है, काम एष क्रोध एष सत्व गुण समुद्भव है ना, क्षमा कीजिए गलती हो गई, रजोगुण समुद्भव है। ये रजोगुण से उत्पन्न होता है और रजोगुण से उत्पन्न होने वाली चीज अंततः आगे जाके दुख पैदा करती है। भगवद्गीता में भगवान ऐसे बोलते हैं। तो जब ये काम और क्रोध नियंत्रण के बाहर जाते हैं, फिर दुख होता है। इसलिए क्रोध को भी हमें वश में कर लेना चाहिए। भगवान और भगवान के भक्तों की भी सेवा करते हुए भी क्रोध को वश में करके चलना चाहिए, और वो परिपक्वता होनी चाहिए कि कब इसको इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें, कब इस्तेमाल करें और किसके प्रति इस्तेमाल करें। कहीं भी जाके कुछ भी हम नहीं बोल सकते कि हम ब्रह्मचारी, हम भक्त हैं, ऐसे नहीं कर सकते। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सोच समझ के चलना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, जब हम किसी एक के ऊपर गुस्सा होते हैं तो दूसरे के ऊपर प्रकट करते हैं, तो डबल गलती हो गई ना। तो अन्य के ऊपर करने से क्या फायदा, वो बेचारे की गलती क्या है? आप दूसरे के ऊपर क्रोध करेंगे तो भलाई नुकसान किसका होगा? नुकसान आपका ही होगा ना। यदि मैं कोई गलत काम करता हूं, किसी को भला बुरा कुछ कह देता हूं, गुस्से में आकर, अहंकार से, कुछ भी हो, तो समस्या किसकी है? समझो कि मैं आपको कह रहा हूं, भला बुरा कुछ कह दिया बिना वजह के, या वजह होते हुए भी नियंत्रण के बाहर जाके मैंने कुछ कह दिया, तो समस्या किसकी है, आपकी है या मेरी है? समस्या मेरी है, इससे ज्यादा नुकसान मेरा हुआ, क्योंकि मैं नियंत्रण से बाहर चला गया, मैंने कुछ भला बुरा कर दिया, कह दिया। इसीलिए हमें अपने आप को बहुत सोच समझ के करना चाहिए कि गुस्सा करने से क्या मुझे मिलेगा, क्या लाभ है मेरे को करने से। उल्टा मेरा ही मन जो है विचलित हो जाएगा, जब के समय भी मैं वही सोचता रहूंगा, दांत रगड़ के बैठ जाऊंगा जब करते समय, फिर क्या फायदा। ये संसार भौतिक जगत ऐसे है, भगवान ने ऐसी सृष्टि की रचना की है, और विशेष करके कलयुग में, कि आपको क्रोधित होने के लिए प्रेरणा अक्सर मिलती रहेगी। सही बात है ना, कदम कदम पर आपको क्रोधित होने के लिए कोई ना कोई अवसर मिल जाएगा। जहां भी आप देखेंगे क्रोधित होने के लिए कोई अवसर दिखेगा आपको। क्यों? कलो दोष निधे राजन, ये दोषों की निधि है, दोषों का सागर है। जहां दोष दिखाई पड़ता है गुस्सा आ जाता है। तो दोषों के सागर में दोष नहीं दिखाई देंगे तो और क्या दिखाई देंगे? जैसे हम समुद्र के पानी के समुद्र में जाते हैं तो पानी नहीं दिखाई देगा तो और क्या दिखाई देगा? पानी ही तो दिखाई पड़ेगा ना। उसी तरह से दोषों के समुद्र में है तो दोष ही दोष सब जगह दिखाई पड़ेंगे। तो उपाय क्या है? कलो दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संघ परम व्रजेत। तो इसलिए हमारे कीर्तन, हमारे क्रोध को नियंत्रण में लाने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, विशेष करके श्रवण कीर्तन के ऊपर, हरिनाम के ऊपर जोर देना चाहिए। हमारी माला ठीक ठाक करनी चाहिए, भक्तों के बीच में रह के श्रवण ठीक ठाक करना चाहिए, कथा का, क्लास का। फिर वो विवेक बुद्धि हमारे मन में आएगी, हमारी बुद्धि इतनी स्थिर और शक्तिशाली हो जाएगी कि हम इन वेगों को वश में कर पाए। अपने अंदर हाँ अन्यों के अच्छे गुण देखना, अपने दुर्गुण देखना, तो ये हम कैसे समझ सकते हैं? ऐसे ही समझ लेना, जैसे ही हमारे वैष्णव आचार्यों ने दिखलाया है। लेकिन याद रखिए कि जब हमें दुर्गुण दिखाई पड़ेंगे, दोष दिखने ही वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, है ना? दोषों का सागर है तो दिखना ही दिखना है। परंतु इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं ना, पिछले क्लास में जब वो युधिष्ठिर महाराज की कहानी में बताई थी कि जब दोष देखते हैं तो हमारी भावना कैसी होनी चाहिए। तो उस समय हमने चर्चा की थी ना विस्तार में, कई पॉइंट दिए थे कि हमारा भाव कैसे होना चाहिए और हमारा स्थान कैसे होना चाहिए। जब हम किसी दोष को देखते हैं, पहली बात तो हो सकता है कि दोष नहीं है, मुझे लग रहा है कि दोष है परंतु वास्तव में दोष नहीं है, मुझे कोई गलत जानकारी हुई है, हो सकता है। और यदि सचमुच में दोष है भी तो उसने क्यों वो दोष किया, इसके पीछे क्या कारण था? हो सकता था मैं वहां होता तो मैं भी वैसे ही करता, हो सकता है। और क्या परिस्थितियां थीं जिसके कारण वो व्यक्ति मजबूर हो गया ऐसे करने के लिए, वो भी हो सकता है कुछ। और यदि बिल्कुल गलती ही है फिर भी हमारा भाव क्या होना चाहिए? कि ऐसा नहीं कि हम आतुर हो जाए दूसरों की गलती को ढूंढने के लिए, कि बस चांस मिला, चलो उसने गलती की है, चलो उसको अभी सब जगह इसका प्रचार प्रसार करो कि ये आदमी ने ऐसे 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 गलती किया है, और उस प्रचार प्रसार में आनंद लेना कि दूसरे का अपमान होगा, दूसरे के दोषों का प्रचार प्रसार होगा तो इससे हमें बहुत आनंद आएगा। नहीं, तो उस समय ये सब पॉइंट्स चर्चा किए थे। और विशेष करके हमें देखना चाहिए कि यदि वैष्णव ताते आमने सामने से बैठ के हम उनसे चर्चा करें तो ठीक है, नहीं तो हमारे अधिकारी व्यक्ति जो है उनसे जाके हम बात करें उसके बारे में बड़े नम्रता से और वैष्णवता से, तो ये सब ठीक हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि हमें वैष्णवता का पालन करना चाहिए इन सब चीजों को करते हुए। कृत्रिम रूप से नहीं करना चाहिए अपने अंदर दोष को देखना, कृत्रिम रूप से नहीं, वो धीरे धीरे से सब हो जाएगा, आर्टिफिशियली सब ऐसे नहीं करना कि हम देख के गिनते बैठ गए हाँ मेरे अंदर दोष क्या है, ये भी है, दूसरा क्या है, हाँ ये भी है, कृत्रिम ऐसे नहीं, हम नकल नहीं कर सकते महान वैष्णवों की, ठीक है ना। अब बस अपनी भक्ति करते करते सब ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि आचार्य ने क्या सिखलाया है, और सिंसियरली इन चीज को अपने जीवन में करने के लिए भी प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो अभी समय हो गया, अभी प्रसाद वितरण की सेवा के लिए भी तैयारी करनी है, ठीक है। अच्छा, अगले आज क्या सोमवार है ना, तो अभी हम 3 दिन के लिए वृंदावन के बाहर जा रहे हैं, तो मंगलवार शाम को जाके फिर बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को हम नहीं रहेंगे, तो आने वाले 2 ब्रह्मचारी क्लास हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम रहेंगे नहीं वृंदावन में। तो ऐसा कर सकते हैं, प्रबोधानंद सरस्वती महाराज है ना इधर, तो उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं 2 क्लास कोई भी टॉपिक के ऊपर वो ले लें, कम से कम क्लास चलते रहे, है ना। ब्रह्मचारियों के लिए सुनना बहुत आवश्यक है, ब्रह्मचारियों को श्रवण की तरह और पढ़ता जाएगा, भले वो कोई टॉपिक लें उनके चॉइस का, यदि वो आ सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो और भी डिवोटीज को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या हमारे सन्यासी भी आए हैं विजिटिंग कर रहे हैं उनको भी निवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये कार्यक्रम जारी रखिए, आप बंद मत कीजिए इसको, ठीक है। फिर हम आएंगे अगले सोमवार को, मतलब पहले आएंगे लेकिन ब्रह्मचारी क्लास हम लेंगे अगले सोमवार को, तो आने वाले 2 ब्रह्मचारी क्लास और कोई ले लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। तो आप में से जो फ्री हैं या आपको थोड़ा समय है तो आप चाहें तो प्रसाद वितरण की सेवा में आप मदद कर सकते हैं, हरे कृष्णा। यहाँ नहीं, पंडाल में, यहाँ अपने